बाबू शिव प्रसाद गुप्त, पृष्ठ संख्या 120। तो क्या बाबू शिव प्रसाद गुप्त को भी स्वर्ग के फाटक से नहीं गुजरने दिया गया? बाइबिल में लिखा है, सुई के सुराख से ऊँट निकल जाए भले, परंतु धनवान स्वर्ग के फाटक से त्रिकाल में भी नहीं गुजर सकता। बाबू शिव प्रसाद गुप्त गैर मामूली धनवान, कहते हैं करोड़पति, जमींदार साहूकार के उत्तराधिकारी थे। अगर मुझे मजे में विदित न होता कि दोष देवताओं में भी होता है, तो दिवंगत बाबू साहब को मैं आदमी न कह देवता ही कहता। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है, देवताओं को दिल नहीं होता, और आदमी यदि भरत बन जाए या बुद्ध, ईसा या श्री रामकृष्ण परमहंस या गांधी, तो वह सर से पांव तक दिल ही दिल दिव्य दिखलाई देते हैं। सावन के सघन घन की तरह शिव प्रसाद जी सहज स्वभाव से सभी के लिए जीवनमय सजल थे। उनके रहते सेवा उपवन एक विशाल अतिथि निवास था। किसी तरह का भी गुड़ी हो, गुप्त जी के मन में उसके लिए आदर उदार भाव सुरक्षित था। विद्यार्थियों को, विद्यालयों को, समाज सेवकों को, राष्ट्रकर्मियों को, नेताओं को, मालवीय जी और गांधी जी को बाबू शिवप्रसाद गुप्त मुक्त हस्त दान दिया करते थे, वह भी भावपूर्ण भक्ति से। महामना मदन मोहन मालवीय जी पर तो वह लोटपोट मुग्ध थे। उन्हें पिता अपने को पुत्र और गोविंद मालवीय को भाई कहा करते थे। मालवीय जी भी बाबू शिवप्रसाद गुप्त को इतना मानते थे कि काशी में उन्हीं के यहाँ रहते, उन्हीं का अन्न पाते थे। ज्ञान मंडल को ज्ञान मंडल बनाने में शिवप्रसाद जी के लक्ष लक्ष रुपए अलक्ष हो गए। आज को आज बनाने में भारत माता मंदिर का भव्य कल्पना को दिव्य आकार देना, काशी विद्यापीठ की बुनियाद डालना दिवंगत गुप्त जी ही का प्रसाद है। काशी में जो भी राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई, उनकी प्रेरणा में गांधी जी के बाद बाबू शिव प्रसाद गुप्त ही का नाम लेना मुझे समुचित लगता है। शिव प्रसाद जी के प्रसाद का पूर्ण प्रकाश सारे उत्तर प्रदेश में, खुशबू सारे देश में थी। शिव प्रसाद जी इतने मोटे थे कि लगता था उनका विशाल हृदय बूझकर ही विधाता ने वह बड़ा घर उन्हें बख्शा था। शिव प्रसाद जी का बंगला बड़ा, मोटर बड़ी, कैसे बड़े बड़े वायलर घोड़ों की जोड़ी थी उनकी, जिसके पीछेवर्तीधारी दो दो साईस राहगीरों को तेज स्वर से सावधान करते रहते थे। शिव प्रसाद जी खाने और खिलाने के भी बड़े शौकीन थे। घर की बात अलग, यात्रा में भी उनके साथ पूरा भंडारा चला करता था। काशी में आकर कोई भी बड़ा आदमी सेवा उपवन में ही सुविधा, आतिथ्य और सुख पाता था। अक्षरशः रईस थे श्रद्धेय शिव प्रसाद जी गुप्त। ऐसे जैसे को जेल तो कदापि नहीं होना चाहिए थी, लेकिन भला अंग्रेज कब छोड़ने वाला था। उन्हें भी संखीचे में बंद किया ही गया। शिव प्रसाद जी जैसे रईस को जेल देना फांसी देने के बराबर था। हृदयहीन कानून ने ऐसा समझा ही नहीं, वह जेल में ही बीमार पड़ गए। छूटे तो उन्हें फालीज मार गया। फालीज मार गया शिवप्रसाद गुप्त को? ऐसे नेक आदमी को जिसकी तुलना देवता से भी करने को तैयार नहीं? तो यह सारे का सारा उत्तम अभियान, विधि विहित दान, सबकी पूजा, सबका सम्मान, सबके लिए अपार मोहमय प्यार, सदाचार नहीं अपराध था? क्योंकि शिवप्रसाद जी को विकराल भयानक दंड मिला, जिसे 6 महीने की फांसी कहते हैं। जिस सेवा उपवन में उन्होंने सारे संसार की सेवा की थी, उसी में बहुत दिनों तक वह पक्षाघात से परम पीड़ित पहियादार गाड़ी पर मुझलाते, खुनसाते घुमाए जाते। वह अक्सर बनारसी बोली में व्यथा विह्वल दोहाइयाँ दिया करते थे, रमवा रे रमवा, कौन गुनहवा कर ली रे रमवा। तो क्या बाबू शिव प्रसाद गुप्त को भी स्वर्ग के फाटक से नहीं गुजरने दिया गया? बाइबिल में लिखा है, सुई के सुराख से ऊँट निकल जाए भले, परंतु धनवान स्वर्ग के फाटक से त्रिकाल में भी नहीं गुजर सकता। बाबू शिव प्रसाद गुप्त के जीवन और मृत्यु से जब मैं बच्चा महाराज के जीवन और मरण की तुलना करने चलता हूँ, तो मेरी मति हैरान परेशान रह जाती है। यद्यपि मनुष्य की दृष्टि से दोनों में कोई भी तुलना करना अनुचित जैसा लगता है, लेकिन दैव वियोग से मरे तो दोनों ही गुरुजन थे। बच्चा महाराज ने हार कर कभी राम की पुकार नहीं लगाई। असल में वह अपने प्राइवेट अफेयर्स में राम की भी दस्तदाजी नहीं चाहते थे, और जैसे राम को भी बच्चा गुरु की यह सर्वस्वतंत्र स्वतंत्रता मोहक मालूम पड़ती थी, तभी तो आराम भरा जीवन उन्हें वरदान मिला था।